करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए।
ओम शांति। વરદાતાની વરદાન ભૂમિમાં વિશેષ આપ સર્વ ભઠ્ઠી કે લીએ યહાં પહોંચે હૈ। બહોત અચ્છા યે સમય હૈ ઓર બહોત અચ્છા આપ સબકા સંકલ્પ હૈ જો સંગઠિત રૂપ મેં બાબા કે બેહદ ઘર મેં મધુવન મેં પહોંચ ગયે હૈ। મધુવન ઘર મેં मधुवन निवासी आदरणीय राजयोगिनी शशि बहन आप सबका स्वागत भी करेगी, सुबह तो किया फिर दोबारा भी करेगी। और आज की भट्ठी की शुरुआत में आप सबको मार्गदर्शन भी देगी। शशि बहन करीब 53 साल से ज्ञान में चलते हैं। हरियाणा से आपने ज्ञान प्राप्त किया, साकार बाबा मम्मा की भी पालना आपने ली है और करीब 74 से अर्थात 40 साल से बाबा के इस बेहद मधुबन यज्ञ में आप अपनी विशेष सेवाएं दे रही हो। ऐसे तो मधुवन की ऑफिस तो संभालते ही हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि दादियां बहुत अभी बिखर भी गई है, यहां वहां सेवाओं में कई बाबा के पास भी चली गई है, इसलिए संभालना दादियों को बड़ा मुश्किल अनुभव होता है। उम्र भी हो गई और कमी भी पड़ गई, तो फिर बाबा कुछ न कुछ तो अपना सेवा का स्थान चलाने के लिए निमित्त बनाते ही रहते हैं। तो ऐसे पांडव भवन में शशि बहन सारा कारोबार संभालती भी है, ऑफिस तो संभालती है, लेकिन विदेश का कारोबार विशेष साथ साथ आप संभालते हो। विदेशी भाई बहनों की सेवा पालना आवास निवास जो भी है सारा ही ध्यान आप रखती हो। मीटिंग भी होती है, वार्षिक मीटिंग या बाबा मिलन, तो उसमें भी सारी ही व्यवस्थाएं, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑफिस की जो भी बातें हैं, वो सारा ही कारोबार आप सालों से संभाल रही है। इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ स्पॉट विंग जो हमारी है उस विंग की भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हो, और विदेशियों की सेवा करते हुए सालों हो गए, जब से विदेश सेवा शुरू हुई तब से लेकर आज तक आपने कई विदेश के स्थानों पर परिभ्रमण किया है। वो बताते हैं कि गिनती नहीं कर सकती इतने देशों में वो सेवा के लिए गए हुए हैं। विशेष 5 कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं उस सभी का चक्कर लगाया है और अपने शुभ शक्तिशाली वाइब्रेशन के साथ अनुभव युक्त ज्ञान और पुरुषार्थ क्लासेस प्रवचन आदि भी आपने सबको लाभान्वित किया है। तो वर्ल्ड वाइज शशि बहन इंटरनेशनल सेवाधारी है ऐसे कहेंगे। यहाँ बैठे भी आप देश विदेश की सेवाएं करती हो और जाकर भी कर रही हो। आज हमारी इस भट्ठी के शुभारंभ में आपका हमें लाभ मिल रहा है, तो आपकी अनुभव युक्त प्रेरणा युक्त क्लास सुन करके हम जरूर हमारी भट्ठी को बहुत अच्छी तरह से आगे चलाएंगे। तो मैं अभी नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी प्यारी सबकी सेवाधारी शशि बहन, जो सुबह में भी आपसे मिल करके आपका खुश खैराफत पूछा, कोई तकलीफ है तो भी बताना, तो अपने परिवार की वासना जरूर हम अनुभव कर रहे हैं कि आने वालों का कितना ध्यान रखते हो आप। और ऐसे ही बाबा ने विशेष रत्नों को विशेष सेवा के लिए चुना है, तो अभी हम शशि बहन को सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तृप्ति बहन बाबा के साथ साथ दादियों के बारे बता रही थी। एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगी कि सभी दादियां हमारे साथ हैं, चाहे बाबा ने उनको एडवांस पार्टी में भेजा। सभी दादियों ने यहाँ बैठ करके पांडव भवन में बैठ करके तपस्या की है। बाबा, दादी, दीदी, मम्मा और जो भी एडवांस पार्टी के भाई बहने, दादियां या वरिष्ठ भाई गए हैं, वो सब के सब पांडव भवन में मौजूद हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? आपने एडवांस पार्टी का यह फोटो देखा होगा। उन्होंने कैसे यहाँ पर बैठ करके तपस्या की है, तो आज हम सबको भी, खास करके आप सबको देख करके, मुझे तो आज के दिन हमारी बाबा की लाडली, हम सबकी प्यारी प्यारी सखी भारती बहन याद आ रही है। भारती बहन ने भी यहाँ मधुबन में रह करके बहुत सेवाएं की हैं और उसका शुरू से लेकर के मधुबन से बहुत प्यार रहा है। और भारती बहन की लौकिक बहन गीता बहन भी यहाँ हैं, साथ में भानु बहन भी, जो कि उनका राइट हैंड बन करके सेवा करती रही और करती आ रही है, कर रही हैं। और तृप्ति बहन और अन्य टीचर्स बहनें जो आई हैं, उन सबका और आप सबका प्यारे प्यारे मधुबन में बाप दादा की तरफ से, आदरणीय दादी दीदी की तरफ से और हमारी सर्व दादियों की तरफ से, चाहे वो एडवांस पार्टी के हैं, चाहे यहाँ साकार में हैं, वो हम सब के साथ हैं, उनकी तरफ से आप सबका इस भट्टी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब यही महसूस करते हैं कि बाबा की छत्र छाया में, दादियों की छत्र छाया में हम बैठे हैं और वही कराने वाले हैं। बाबा चला रहा है, बाबा हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रहा है, बाबा कर रहा है, दादियां कर रही हैं, हम नहीं करते हैं, बाबा कराता है। तो हम तो ये अनुभव करते हैं मधुबन में रहते हुए कैसे बाबा का साथ हमें अनुभव होता है। तो जब मैं यहाँ आई और आप सबको देखा सुबह क्लास में, तो मुझे तो साकार बाबा याद आ गए। साकार बाबा के समय पर बाबा के सामने बहनें माताएं बहुत होती थी, भाई कम होते थे, लेकिन इस ग्रुप में भाई ज्यादा है। तो बाबा के सामने जब माताएं आती थी, बाबा को इतना माताओं के प्रति प्यार होता था। बाबा कहते थे ये माताएं जो हैं, वो दिल के स्नेह में बाबा को बिठा लिया। बाबा बाबा करती रहती हैं, कितनी बाधाएं आई, कितनी रुकावटें आई, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी जगह जगह ठोकरें खाई। मुझे याद है एक बार दो तीन बार ऐसी बात हुई, कुछ माताएं आई थी जिन्होंने बहुत भक्ति किया, तो बाबा ने कहा कि भक्ति करते करते तुम्हारे पांव थक गए ना, चलो आज बाबा तुम्हारे पांव दबाता है। फिर भाई आए तो भाइयों को देखा, उनके वो टिक्कर घिसे हुए थे। बाबा ने कहा इन भाइयों ने माथा टेक टेक करके टिक्कर घिसा दिया है, तो बाबा इनको ज्ञान से मसाज करते हैं। तो आज मैं इस ग्रुप को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि साकार बाबा आज कैसे वतन से आप सबको देख करके कितना ना खुश हो रहे हो। बाबा को खुशी होती थी कि बाबा के घर में बच्चे आए और बाबा बच्चों को बुलाते थे, लेकिन सेवा के स्वरूप को देखते हुए अभी क्या हो गया है, सेवा का विस्तार है। बहुत सेंटर खुल गए, और पांडव वन के बाद ये ज्ञान सरोवर बना, वो भी छोटा हो गया। शांतिवन बना, वो भी छोटा हो गया। मधुबन में तो आने का चांस, चारों धाम की यात्रा करने का मिलता है, लेकिन रहने का चांस कम मिल पाता है। लेकिन एक भट्टी एक ऐसा साधन बन गया जो थोड़े थोड़े ग्रुप आकर के मधुबन की बाबा की कर्म भूमि और दादियों की तपस्वी भूमि, त्यागी भूमि, जहाँ पर बाप दादा मम्मा बाबा दादियों ने दीदियों ने बैठ करके इतनी तपस्या की है, ऐसी तपस्वी भूमि में आप सबको योग भट्टी करने का मौका मिला है तो कितना बड़ा सौभाग्य है ना। सौभाग्य तो जब यहाँ भट्टी करेंगे तो इस खुशी में हम भट्टी करें कि हमको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि तपस्वी भूमि में कदम रखते ही हमारा भाग्य खुल गया। बाबा कहते यहाँ कदम रखा पद्मों की कमाई हो गई। बाबा के घर में आना न जाने कितना अनुभव करना। और ये पांडव भवन जो है इसके हर एक स्थान के अपना अपना महत्व है। आप चारों धाम की यात्रा तो करके जाते हैं लेकिन इस स्थान पर बाबा ने क्या क्या किया, कैसे एक एक की पालना की और कैसे एक एक को अनुभव कराया, तो इस भट्टी में भी आप सभी वैसा ही अनुभव करेंगे। बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा के कमरे में जो कमरा आप देख रहे हैं बाबा का, उस समय वो इतना बड़ा कमरा नहीं था। जो बीच का दरवाजा है ना, बीच की दीवार है, उतना ही कमरा था। बाबा की खटिया वही है, बाबा जहाँ बैठ करके तपस्या करते वही हैं, और बीच में एक बाबा छोटी सी जगह थी जहाँ बाबा बैठ करके भोजन भी वहाँ करते थे। बाबा कैसे बैठते, चौकड़ी लगा करके बैठते थे, लकड़ी की संदली होती थी और बाबा वहाँ पर बैठते थे। तो बाबा क्या करते थे, सब जब उसमें बच्चे आते ना, थोड़े थोड़े ग्रुप को बुलाते थे, तो बाबा उनको बुला करके दृष्टि देते हुए जैसे गाय ना, तुम्ही संग खाओ तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग चलो, वो बाबा ने अनुभव कराया। बाबा क्या करते थे, जैसे माँ बाप होते क्या करते, बच्चे छोटे होते हैं खाना नहीं खाता है। आज है उसको गिट्टी बना करके, बाबा क्या करते, गिट्टी बना करके रोटी को लेके, छोटी सी बाबा की जो रोटी होती इतनी छोटी सी होती थी, अभी भोग में भी बनेगी इतनी छोटी सी बनेगी, उसको रोल करके बाबा के, आओ बच्चे मुख खोलो। तो बाबा ने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला करके ये भासना कराई कि वही हमारा माता पिता। तो यहाँ पर जब आप आए हैं तो अभी और तो कोई लौकिक काम करना नहीं है, घर में परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, सेंटर पर सेवा करनी है, ट्रोली बनानी है, सफाई बहुत करती है माताएं, वहाँ सेंटर की ये माताएं बहुत कुछ करती है। आज मधुबन के लिए भेजना, आज ये प्रोग्राम है, आज वो प्रोग्राम है, बाबा की सेवा करते रहते हैं ना। तो आज क्या अनुभव करेंगे, जब भोजन करेंगे तो क्या अनुभव करेंगे, बाबा हमें खिला रहा, बाबा के घर में खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा हमें सब खिला रहा है, बाबा पालना कर रहा है। तो उसमें ऐसा अनुभव होगा कि हम बाबा के सामने बैठे। आप तो कहेंगे हमने साकार को देखा ही नहीं है, आप में से तो किसी ने नहीं देखा होगा साकार को। थोड़ी सी माताएं और भाई होंगे जिन्होंने दादी को देखा होगा, दादी को जिन्होंने देखा वो हाथ खड़ा करो, बहुत है। दादी आपके पास आई होंगी, जो यहाँ पर मधुबन में आकर के थोड़ा टाइम सेवा में रहे वो हाथ खड़ा करो, वो भी हैं, बीच बीच में मधुबन में आकर के सेवा करते रहे हैं। तो अभी बाबा ने यहाँ पर जो हम बच्चों को बुलाया है, एक तो इस तपस्या भट्टी के लिए कि एक तो हम बाबा के साथ का अनुभव करें, दूसरा बाबा ही मेरा संसार है। संसार में क्या होता है, माता पिता भाई बहन और टीचर और साथ में क्या है, बाकी रिलेशन को क्या गिनती करेंगे। बाबा ने कहा था एक बार मुरली में, बाबा ने कहा ना, मैं ये बाबा कौन है, तुम्हारा साजन है। फिर दूसरा बाबा ने क्या कहा था, और क्या कहा था, बाबा कौन है, बच्चा है, माताओं को पक्का याद है। और क्या कहा था बाबा ने, बाबा ने कहा था ये तुम्हारी बड़ी माँ भी है, ब्रह्मा बाबा ये तुम्हारी माँ भी है, इसकी माँ कोई नहीं है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी दादी भी है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी दादी भी है, तो माँ की गोदी में खेलो, दादी की गोदी में, दादी तो बहुत प्यार करती है बच्चों को। घरों में लौकिक में भी ऐसा होता है कि दादी जो बच्चों को, पोते पोतियों को प्यार करती है ना, उतना माँ बाप कम करते हैं। तो बाबा हमारी दादी भी हैं, दादा भी हैं, परदादा भी हैं, माँ बाप भी हैं, संसार भी हैं। तो यहाँ भट्टी में रहते हुए हम ये पक्का करेंगे कि यहाँ रहते हुए हमारी बुद्धि कहीं जाए नहीं, लेकिन एक बाबा की तरफ, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सच्चा संबंधी है, बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता है, बाबा ही मेरा फ्रेंड है, बाबा ही मेरा टीचर है, हर संबंध का अनुभव हम कैसे करें। मुझे याद है यही जून का महीना था कि गर्मी के दिन होते थे, सुबह सुबह योग के बाद बाबा, उन दिनों तो बाहर के लोग होते नहीं थे, केवल बाबा और थोड़े से बच्चे। अभी तो अमृत वेले के बाद एक डेढ़ लोग हैं, कारोबार शुरू हो जाता है, उस समय तो कुछ भी नहीं। अभी तो चारों तरफ सब्जी भी कटेगी, चाय भी बनेगी, ये भी होगा, नाश्ता भी तैयारी हो जाएगी, सब आ रहे हैं, कोई सैर करने जा रहे, कोई नहीं था, बाबा और थोड़े बच्चे। तो उस समय बाबा ने एक बड़ा अच्छा अनुभव कराया था। बाबा ने ये कहा कि बच्चे आगे चल करके देश के अंदर तो बहुत सेंटर खुलेंगे ही, लेकिन विदेशों में भी बहुत सेंटर खुलेंगे। और बाबा सुबह सुबह क्या करते थे, यहाँ जो ऑफिस है ना बाबा के कमरे के पास, इधर ईश्वरदादी का ऑफिस, वहां बाबा ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते थे। बाबा धीरे से चलते चलते निव्या भाई के ऑफिस के बाहर सीढ़ी, अभी तो सीढ़ियां उसमें पहाड़ी थी छोटी सी, वहां खड़े हो जाते थे और सब भाई बहने साथ में होते थे। ऐसा लगता था कि सब फरिश्ते चल रहे और बाबा उनको दृष्टि देते थे, दृष्टि देते देते फिर बाबा उनको वरदान देते, वरदान देते देते बाबा कहते थे अब सब बच्चे सारे विश्व के अंदर वाइब्रेशन फैलाओ। तो ये सारी देश विदेश की सेवा किसने की, बाबा ने की। बाबा ने उसी समय से ही विश्व के कोने कोने के अंदर वाइब्रेशन फैलाए, धरती तैयार की, और धरती तैयार करके अपने बच्चों को भेजा और अपने बच्चों को निकाला। अहमदाबाद का भी बाबा ने शुरू कराया। आप सभी इतने लकी हैं कि जिनको बाबा ने, बाबा की प्रेरणा से ही अहमदाबाद में सेंटर खुला। कैसे अहमदाबाद में बाबा ने दादी जानकी को भेजा और वहां जाकर के सेंटर बीज डाला, सेंटर खुला, हरा भरा हो गया। और बाबा ने तो इतना अच्छा टाइटल दे दिया है, गुजरात जो है मधुबन का कमरा है। तो आप तो हो ही मधुबन निवासी, हो गए कि नहीं मधुबन निवासी। बाबा जिसको कहता मधुबन का कमरा है तो कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा ने जैसे शुरू में करके दिखाया, तो इस भट्टी के अंदर भी हम ये अनुभव करें कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते क्या करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखते थे। मुझे याद है बाबा को देख रहे हैं, चल रहे हैं, कोई किसको देख ही नहीं रहा है। वो फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे रहा था कि हर एक अपनी ईश्वरी मस्ती में था। तो इस भट्टी में भी आपको ये अनुभव कराने के लिए बाबा ने बुलाया है कि हर एक अपनी मस्ती में, चाहे आपको 10 के बीच में, 8 के बीच में, 4 के बीच में रहने का मौका मिला है, लेकिन अमृत वेले उस समय ये अनुभव रहे कि हम बाबा के साथ चल रहे, बाबा हमारे अंदर शक्ति भर रहा है, बाबा हमारे अंदर वरदान दे रहा है, हमें वरदानों से सजा रहा है, वरदानों से भरपूर कर रहा है। फिर उसके बाद बाबा क्या करते थे, जब मुरली क्लास चलती थी ना, फिर मुरली क्लास में ये हिस्ट्री हॉल है, हिस्ट्री हॉल में जब बाबा आते थे, बाबा किधर से आते थे, ये जो पहला बहनों की तरफ दरवाजा है वहां से आते थे, वहां से आते थे और वहां पर उसी गेट के पास ही वो कैसेट वगैरह, उस समय ग्रामोफोन रहता था, ग्रामोफोन देखा है, टेप नहीं होता था, कोई दूसरा नहीं होता, ग्रामोफोन होता था, वो एक भाई ऐसे हाथ से घुमाता था, एक बड़ी प्लेट होती थी, फिर उसके ऊपर सुई लगाते थे, फिर धीरे धीरे सुई चलती जाती, गीत बजता जाता है, तो उस समय वो ग्रामोफोन होता था। फिर उसके बाद एक बड़ी टेप आई थी, बहुत बड़ी टेप थी, इतनी बड़ी सी थी, उसको रिकॉर्ड करते थे। फिर बहुत समय के बाद एक पहले छोटी छोटी वो फ्लिप की टेप आई, तो ऐसे बाबा उधर से आते थे। जब बाबा आते थे तो बाबा पहले क्या करते थे, मम्मा को पहले भेज देते थे, मम्मा हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठ करके सब बच्चों को दृष्टि देती, दृष्टि दे करके मम्मा महावाक्य उच्चारण करती थी। तो आज मम्मा का क्यों बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, जून का मास किसका है, मम्मा का है ना, तो मम्मा के लिए इसलिए बता रही हूँ, मम्मा क्या करती, बच्चों को इतना ज्ञान से भरपूर कर, मम्मा की वाणी एक एक शब्द वो स्वरूप बना देती थी। बाबा तो सागर की तरह, सागर जैसे ना लहरें आती जा रही, आती जा रही, ढेर लहरें आती है, ढेर अनुभव कराते, मम्मा एक ही शब्द के द्वारा वैसा स्वरूप बना देती। और फिर जैसे बाबा आने वाले होते थे, बाबा खड़ाव डालते थे, पहले हमें याद है शुरू में साकार बाबा के टाइम खड़ाव डालते थे, बाबा खड़ाव डाल करके जैसे आते थे जरा सी आवाज होती थी, मम्मा को मालूम पड़ जाता था कि बाबा आ रहे हैं, तो मम्मा धीरे से जैसे ना सागर धीरे लहर धीरे धीरे शांत हो जाते। फिर बाबा आकर के मुरली चलाते तो मम्मा उस संदली पर बैठी है, संदली पर बैठ करके साइड थोड़ा सा ऐसा घूम करके ऐसे बैठ जाती जैसे कोई छोटा बच्चा चात्रिक होता है ना, बाबा क्या कह रहे हैं बड़े प्यार से सुनते, सुनती नहीं वो अपना समा लेती थी। आज बाबा ने कहा ना चिड़ियों ने सागर को समा लिया, अरे कौन सी चिड़िया थी, बाबा ने तो मम्मा तो थी, मम्मा के साथ समाई सब माताएं भाई सब चिड़ियों ने सागर को समा लिया। तो जो सागर को समा लिया वो स्वरूप हमने देखा मम्मा के अंदर, बाबा ने जो कहा फिर वो सब सुनते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, जब क्लास पूरा होता था ना, क्लास पूरा होने के बाद साकार बाबा, ये जो दीदी का कमरा है, इस समय दादी का सिटिंग रूम है, यशुबेन के ऑफिस के सामने डाइनिंग के सामने कमरा है जहाँ दादी का मीटिंग रूम था, अभी बंद रहता है बाद में, पहले उसमें मम्मा रहती थी, मम्मा के बाद फिर दीदी रहती थी, साकार बाबा के टाइम पर मम्मा का रूम था और फिर मम्मा के टाइम पर बाबा मुरली चला करके पूरा करके उस कमरे में आके बैठते थे। सुना है कैसे हैं, आकर के संदली पे बैठ जाते थे और सब भाई बहने आकर के बैठते थे, फिर सब उसको बाबा कहते सब कहते थे चिट चैट रू रूहान। तो बाबा जो मुरली चलाते थे, मुरली चलाने के बाद हमारी दीदी मनोहर दादी सब दादियां बाबा से प्रश्न पूछते थे, बाबा आज आपने ये कहा तो क्या बाबा क्या करते होंगे, अब मुरली तो चलाई शिव बाबा ने, सुन रहे हैं ना माताएं हैं, मुरली चलाई शिव बाबा ने और प्रश्न पूछते थे ब्रह्मा बाबा से। अब फिर ब्रह्मा बाबा तो कहते थे ना नशा था कि पहले पहले मैं शिव बाबा की मुरली सुनता हूँ, लेकिन कोई कोई बात जो होगी तो कहेंगे बाबा आपने ये क्यों कहा, ब्रह्मा बाबा कहते थे मैंने थोड़ी काशी, बाबा ने कहा जाओ जाओ उधर से पूछो। बहुत मस्ती, इतना मस्ती होती थी, इतना जैसे ज्ञान के ज्ञान रत्नों से खेलना होता है ना, बाबा कहते ज्ञान रत्नों से खेलो। एक है खुद अपने आप खेलना, एक है रूहान करना, एक है दूसरों को सुनाना, एक है प्रश्न पूछना। तो वो प्रैक्टिकल रूप हमने देखा कैसे मम्मा बाबा दादियां बाबा से इतने हल्के होकर के ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं। तो जैसे वो खेल इतना प्यारा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि हम तो देखते ही रहते, हम तो छोटे बच्चे थे। अब वो दादियां खेल रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, बुद्धि में बैठ तो रहे हैं, लेकिन इतना प्यारा दृश्य लगता था कि कैसे बाबा ने बच्चों को ज्ञान रत्नों से खेलना सिखाया। तो ये भी एक अनुभव है कि ज्ञान का अनुभव करना, ज्ञान को शेयर करना, उसका वो करना। फिर बाबा के जब पूरा होता था तो बाबा फिर बच्चों को अपने अपने ड्यूटी पर भेज देते। लेकिन यहाँ तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी क्या है आज, क्या ड्यूटी रहेगी आपकी भट्टी में? पुरुषार्थ, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा की झोपड़ी में जाओ, बाबा से बात करो, बाबा से मिलो, बाबा का हाथ पकड़ के चलो। हमें ये भी याद आता है, बाबा कभी कहते ना मैं बहुत बच्चे वाला हूँ। बाबा जब यहाँ पांडव भवन के आंगन में चलते थे ना, तो कोई ना कोई बच्चा दौड़ के आता था, बाबा का हाथ पकड़ लेता था। अब हाँ, बाबा कभी किसका हाथ, एक बच्चा हाथ पकड़ता था फिर दूसरा पकड़ता था। छोटा बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, एक हाथ पकड़ता है फिर दूसरा के मैं भी पकड़ूं, फिर दूसरा पकड़ता, फिर आगे चल के तीसरा पकड़ता, फिर चौथा पकड़ता। तो एक बार बहुत सारे थे, वो कह मैं पहले हाथ पकड़ूं, वो कह मैं हाथ पकड़ूं। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे हम बाबा को पहले पकड़ें, वो कहेंगे मैं पकड़ूं, क्या करेंगे? सारे भागेंगे, इकट्ठे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या करोगे, माताएं क्या करोगे, भाई क्या करोगे? बाबा ने क्या किया, ऐसे दोनों हाथ कर दिए, एक एक दो दो बच्चे ने एक एक उंगली पकड़ ली और दोनों बाबा ने कहा चलो सब चलो। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा कहते ना, बाबा का दिल बहुत विशाल है, बाबा का दिल रूपी तख्त इतना बड़ा है, जितना बैठना चाहो बैठो, ना वो हिलेगा। और वो दिल रूपी तख्त पर बैठ जाएंगे तो बाबा तो आपको तख्त नशीन बना देगा। बाबा के हाथ में हाथ दे देंगे तो बाबा आपको चलाता रहेगा, हल्का कर देगा। बाबा का वरदानी हाथ आपके मस्तक पर रहेगा, सिर पे रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ भट्टी में इसलिए बुलाया है कि अपना हाथ बाबा के हाथ में, अपने आपको बाबा के दिल तख्त पर बिठा दो, हल्के हो जाओ, उड़ो, फरिश्ता बन जाओ। फिर बाबा क्या करते थे, जब सब नाश्ता कर लेते थे, सब कारोबार पूरा होता था, 10 बजे ऑफिस में आते थे। बाबा सब पत्रों का जवाब देते थे। और बाबा के पत्र देखे हैं आपने? नहीं देखा है? किसने देखा बाबा का पत्र? दो चार ने है, बस दो चार ने देखा है, 10-15 बस है। बाबा पता है क्या, बाबा जो पत्र लिखते थे हर पत्र का जवाब देते थे। अभी तो बाबा कहते इतने लंबे लंबे पत्र नहीं लिखो, आप पत्र का जवाब कैसे लेंगे, क्या कहेंगे, ओम शांति है? बाबा को पत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाबा आई एम ओके, बस ओके है, ऐसे करना है ना। तो बाबा ने वो पत्र में सिखाया था कैसे लिखना। बाबा जो पत्र लिखते थे ऐसे लंबे चौड़े पत्र नहीं होते थे, लिखने वाले भी शॉर्ट लिखते थे। बाबा पत्र लिखते सिंधी लिपि, रेड पेंसिल, सिंधी लिपि, वो सिंधी लिपि जो है ना, भाषा लिपि, जैसे उर्दू लिखते हैं ना उल्टा, ऐसे सिंधी लिपि ऐसे उल्टा लिखते हैं, लेकिन भाषा हिंदी। बाबा लिखते थे स्वदर्शन चक्रधारी नूर रतन, इस बच्चे को याद प्यार पत्र पाया, बच्चे को ने बहुत सेवा का किया, वो थोड़ा लिख करके एक और पेज पत्र होता था दो पेज का, लेकिन उसमें ऐसा वरदान, वो वरदान जो है सदा काल के लिए उनका साथी बन गया। तो अभी बाबा को हम ओके कहेंगे, आपको पत्र नहीं लिखना, अनुभव लिखना वह लास्ट में, लेकिन बाबा को ओके कहेंगे तो देखना कैसे वरदानों से भरपूर हो जाए। तो बाबा जब पत्र लिखते थे वो क्या करते, कभी ऑफिस में बैठते थे, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे पेन पेंसिल रखा है, तख्ती रखा है उस पे, या फिर बाबा झोंपड़ी में, बाबा की वो जो गद्दी है ना, गद्दी में तीन पिल्लो रखे होते थे, बाबा पिल्लो के ऊपर ऐसे तख्ती रखी, उस पे लिख रहे हैं। वहां बाबा की झोंपड़ी में जाओगे ना, वहां देखना पढ़ रखा होगा पत्र है, वहां देखना वो सिंधी लिपि में, और बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सिंधी लिपि वरदान लिखे, अब वो भाषा तो सिंधी लिपि कोई जानते नहीं थे, ईशु दादी उसको हिंदी में लिख देती थी, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में हिंदी में। और वो पत्र जब आता था तो हम लोग सब सेंटर पर इंतजार करते रहते, बाबा का पत्र आए तो अकेले नहीं पढ़ती थी हमारी मनोहर दादी, हम जब थे वहां मनोहर दादी थे, पत्र आया सब बैठ जाएंगे, दादी पत्र आया, दादी पत्र आया, बाबा का पत्र आया, बोलेंगे हाँ आया है, सब कठे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे जैसे बच्चे अपने बाप की चिट्ठी सुनने के लिए तैयार है, हम सब के सब कठे बैठ जाते थे। फिर दादी जैसे पत्र पढ़ती सब बाबा की यादों में खो जाते थे, खो जाते थे, ऐसे प्यार में खो जाते थे जैसे कि साकार बाबा हमारे सामने। तो ये अनुभव करना है कि अब हमारे को साकार बाबा कैसे हमारी पालना कर रहे हैं, वो अब हम यहाँ अनुभव करेंगे। और दूसरा, भट्टी के अंदर ये जो तपस्वी भूमि में आपको बुलाया, तो बाबा के टाइम पर ये सब बहुत छोटा सा स्थान था, ये मेडिटेशन हॉल नहीं था जहाँ आप तपस्या कर रहे हो, साकार बाबा के टाइम पर नहीं था, अव्यक्त बाबा के टाइम बना। यहाँ पर क्या था, क्या था मालूम है, क्या था, ये अंगूर की बेल थी। यहाँ ये जो अंगूर की बेल छोटी सी देख रहे हैं ना, साकार बाबा ने अपने हाथ से लगाई थी, और 24 जून से पहले, अभी तो इसमें लगे नहीं है, 24 जून से पहले ये सारी अंगूर की बेल थी, यहाँ तक ये पहाड़ी थी सारी, फिर ये पहाड़ी पूरी थी, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे अंगूर ही अंगूर होते थे, और फिर अंगूर होते थे, और 24 जून से पहले बड़ा बड़ा अंगूर उसमें दाना होता था, बाबा वो अंगूर अपने हाथ से तोड़ करके मम्मा डे पर सबको, मम्मा से अपने हाथ से दिलाया, फिर मम्मा डे पर बाबा सबको अंगूर बेचते थे। फिर जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते गए तो फिर ये पहाड़ी के ऊपर मेडिटेशन हॉल बनाया। ये मेडिटेशन हॉल जो है 1976 में बन के पूरा हुआ, अव्यक्त बाप दादा 1976 में इस हॉल में आना आरंभ शुरू किया। पहले अव्यक्त बाप दादा, जब बाबा अव्यक्त हुए ना, अव्यक्त बाप दादा छोटे बाबा के कमरे में आते थे, फिर उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, और उसके बाद फिर बाबा एक दो बार तो बाहर आंगन में आए, जगह बहुत कम पड़ गई, फिर यहाँ मेडिटेशन हॉल बना, यहाँ आने लगे। यहाँ पूरा हुआ तो फिर बाबा ओम शांति भवन आने लगे, ओम शांति भवन भी छोटा होने लगा, अब बाबा कहाँ आते हैं, ज्ञान कहाँ आते शांति वन में है, ज्ञान सो में एक दो बार आए तो वहां भी इतने नहीं बैठ सकते हैं, शांति वन में आते और अभी वहां भी छोटा हो जाता है ना, तो बाबा कहते हैं आगे चल के बाबा के बच्चे बड़े बहुत बढ़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा इतने बच्चे बढ़ भी जाएं, लेकिन उनमें से सौभाग्यशाली कौन है, आप बताओ कौन है सौभाग्यशाली, बताओ कोई इधर उधर देखेगा मैं पकड़ लूंगी कौन है सौभाग्यशाली, बोलो ना, हम हैं, भूल गए क्या, अरे आप बोलो हम हैं, हमको चांस मिला है, मुन्नी बहन ने भट्टी बनाई और भट्टी का डेट बनाई, हम तो मुन्नी बहन को थैंक्स देते, आप सबको यहाँ बुला लिया, देखो भाग्यशाली हो के नहीं कि आपको मौका मिला, लोग अभी हमको फोन करते रहते हैं, बहन जी हमारा क्यों नहीं रखा, हमने कहा इस साल के इस ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ, अब जिन्होंने ले लिया ले लिया, फिर जब अगले साल नंबर आएगा तब आएगा, तो आपका तो सेकंड में नंबर आ गया, मौसम भी अच्छा, महीना भी अच्छा, बाबा का घर और इतना अच्छी ठंडी ठंडी हवा, वहां तो आप एसी चलाते हैं, एसी चलाने की जरूरत ही नहीं, पंखा चलाए ठंड लगती बंद करो है? तो ऐसे स्थान ठंडक, बाबा के ज्ञान की शीतल बोछारे पड़ती हैं, बाबा की गोदी में बैठे हैं और बाबा की कर्म भूमि पे बैठने का मौका मिला है, तपस्या करने का मौका मिला है, बाबा के साथ चलने का मौका मिला है और यहाँ पर दादियों से मिलने का मौका। ये कभी नहीं कहना हमारी दादियां इधर उधर हैं, सब यहाँ हैं, कभी नहीं बोलना बाबा नहीं है, बाबा भी यहाँ है, दादियां भी यहाँ है। मुझे याद आता है कैसे बड़ी दादी मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, सारी दादियां बैठ करके यहाँ आंगन में बैठ जाते थे, लगता था इतने पावरफुल कौन बैठे हैं, आंगन में बैठ करके तपस्या की है। दादी बैठ जाती थी, सारी दादियां बैठ जाती थी सर्कल लगा करके, सर्कल में बैठे यहाँ देखते थे सब तपस्या करे, वहां हंसते थे, बहलते थे, खेलते थे, पिकनिक करते थे। तो अभी भी वहां जाते थे ऐसा लगता सब दादियां खड़ी है, दादियां साथ हैं। सब दादियों का एक ग्रुप फोटो आप देखेंगे, शायद नीचे भी लगा हुआ देखा होगा, यहाँ बाहर भी होगा, तो सब दादियां यही हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ ही बाबा के साथ पालना ली। पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट किया माउंट में 5 जून, आज है 7 जून, 5 जून को शिफ्ट किया, महीना भी अच्छा, 5 जून 1950 को शिफ्ट किया था। पहले वो दूसरी बिल्डिंग थी, फिर बाद में तो इधर काफी देर के बाद इस बिल्डिंग में आए। तो फिर महीना भी अच्छा, मम्मा का डे भी अच्छा, बाबा की पालना का भी महीना, तो सब दादियां यहाँ पर बैठ करके आपस में मिलकर के रूहान करते। और मुझे याद है जब दादियां सभी जोन्स में रहती थी, जैसे ब्रिजेंद्रा दादी महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज, और बाकी दादियां कोई मिठू दादी पंजाब की तरफ थी, चंद्रमणि दादी अमृतसर की तरफ थी, हृदय पुष्पा दादी बैंगलोर की तरफ थी, तो दादी क्या करती थी, सभी दादियों को इकट्ठा बुला लेती थी। बाबा के बाद बड़ी दादी ने क्या किया, सब दादियों को बुलाया और सब दादियों को बिठा बुला करके एक एक सब उनसे मिलते अनुभव करते। तो ये हमारी दादियां जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली, जिन्होंने पालना तो क्या, साकार बाबा के साथ बैठ करके कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके इतनी गहन तपस्या की है, वो गहन तपस्या का फल आप और हम सब है। ये जो सेंटर इतने बढ़ गए हैं, इतने बच्चे बाबा के बढ़ गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और भी बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे तपस्या का फल है, किया दादियों ने, किया बाबा ने और फल खा रहे हम। बाबा कहते हैं ना, साकार बाबा के टाइम पर क्या है, बाबा ने तो इतनी मेहनत, सब ने इतनी मेहनत की और माखन कौन खा रहे, हम खा रहे हैं, और अभी इस तपस्या भट्टी में थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ढेर बाबा के बच्चे अनुभव करेंगे। अब सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर समाचार है कि मधुबन के अंदर तपस्या की भट्टियां चल रही, केवल आपके पास नहीं है समाचार, गुजरात में नहीं है, केवल अहमदाबाद में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर समाचार है। तो जैसी तपस्या आप करेंगे, जो अनुभव करेंगे, जो वाइब्रेशन फैलाएंगे, वो सारा का सारा अनुभव और वाइब्रेशन पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर पहुंचेगा। और यहाँ जब हम आएंगे, आए हैं, बैठे हैं, एक तो सब बिल्कुल हल्के होके जाए, कोई भी भारीपन है, मन का भारीपन है या कोई परिवार का थोड़ा बहुत छोटे छोटे बंधन होते हैं या फिर दैवी परिवार के अंदर छोटी छोटी बातें आती हैं, मन भारी होता है, तो ये भट्टी है सब कुछ खत्म करने का। कोई भी भारीपन हो, सुस्ती भी खत्म करने, आज तो मैं देख आपको तो मैं थैंक्स देती हूँ, सारी रात तो बस में बैठे आए, फिर भी आपको बिठा के रखा है, फिर भी आप थके नहीं है, थके हैं कि नहीं थके, नहीं ना, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, शरीर भी बाबा कहते रेस्ट चाहता है, तो इसलिए तो कोई भी प्रकार का भारीपन है ना, उसको भट्टी में खत्म, दूसरा भट्टी के अंदर नई प्रेरणा लेके जाने का। तीसरी बात हम क्या देखेंगे कि बाबा ने हमको कितना भर दिया, बाबा ने हमको फरिश्ता बना दिया, बाबा ने हमको एक लाइट हाउस बना दिया है। वो अभी हमको करके देखना है, वो जो आप अनुभव करेंगे उस अनुभव के आधार से जो भी आपको देखे, जिसको बाबा कहते हैं चलते फिरते म्यूजियम, आपको देखे लगे कि बाबा ने क्या इनको दे दिया, बाबा ने इनको क्या भर दिया है। बाबा कहते हैं आपको देखें लगे कि इनके चेहरे से बाबा को देख रहे हैं, बाबा कहते हैं चैतन्य म्यूजियम है, ठीक है ना। फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के साथ साथ एक बात का भी बाबा हमेशा कहते थे, जब भी बच्चे आए तो ये महसूस करें अपने घर में आए, अपने घर में आए ना। अच्छा, घर में आते तो बहुत आराम से रिलैक्स रहते। और बाबा ने एक बात ये भी पक्की की है कि योगी वो है जो स्वयं का और शरीर का ज्ञान रखे। कोई भी तकलीफ है, कोई दवा चाहिए, कुछ चाहिए तो डिस्पेंसरी भी है। ऐसा नहीं सोचना कोई बात नहीं, कई बार हम लोग भी कर लेते हैं, दो दिन के लिए क्या बोलना है, फिर थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर वो थोड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो, दवा चाहिए, कुछ भी चाहिए, खाने में कुछ चीज चाहिए तो आप बोल सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। और फिर एक दूसरी बात आपको बता दें, कमरे के अंदर जोखिम की चीज नहीं रखना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अपने टीचर को दे दो या इधर रिसेप्शन में जमा करा दो, थोड़ा बहुत है वो कोई बात नहीं, वहां कोई ऐसी चोरी होता नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि, बाबा कहते हैं ना भट्टी में माइंड को हल्का रखो, दिमाग माइंड जो पुल नहीं होवे वो ध्यान रखना है। माइंड पुल हो गया तो फिर क्या होगा, फिर बुद्धि बैठे बैठे योग में, अरे फलानी चीज मैंने वहां रखी थी, फिर बैठे बैठे लगेगा योग पूरा हो मैं जल्दी जल्दी जाऊं वो चीज उठाऊं क्योंकि मैं वहां छोड़ के आई। तो इसलिए आने से पहले अपने कमरे में अपना ध्यान रख के अपनी सारी चीजें संभाल के सेट करके आओ, योग भट्टी में बैठे बैठे ख्याल ना आ जाए कि मैं हाथ की घड़ी छोड़ आई, मैं अपना बैग छोड़ आई, मैं ये पर्स छोड़ आई, फिर योग में बैठे बैठे बुद्धि उधर खींचेगी। तो बाबा कहते हैं सब बातों से जिनको सेट करना आता है ना, जिसको बाबा कहते हैं व्यवस्था, जिसकी व्यवस्था अच्छी है उसकी अवस्था भी अच्छी है। अगर चीजें इधर उधर कर देंगे ना फिर बुद्धि उधर जाएगी, तो इसलिए मन को भी अपना सेट करके रखने का। तो आप तो कितने सौभाग्यशाली, बाबा के घर में आज बाबा भी आपको देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, बाबा भी आपका स्वागत करते हैं। और बाबा के घर के अंदर हल्के रहो, अनुभवी बनो, उड़ते रहो, बाबा के साथ का अनुभव करो, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। आपका फिर से स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। सब भाई ठीक है, तबीयत ठीक है, सब रहना ठीक है भाइयों का।
ओम शांति। साकार मम्मा बाबा के साथ के कुछ कुछ अनुभव भी और यहाँ मधुवन की बातें भी सुनी, महत्व क्या है वो भी हम सभी ने समझा है। अभी भट्टी का आरंभ हो रहा है तो थोड़ी कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे और दिनचर्या भी सुनेंगे, क्योंकि भट्टी कहाँ कर रहे हो वो स्थान का महत्व, जैसे शशि बहन ने भी बताया, खुद भगवान ने ये स्थान चुना है। जब पाकिस्तान से भारत में आना था तो पहाड़ों पर सब तपस्या करे, जहां एकदम एकांत, उस समय तो बहुत एकांत था, अभी तो फिर भी थोड़ा दुनिया की रीति से बढ़ गया है, तो जहां कई प्रकार के योगी पवित्र आत्माएं ऋषि मुनियों की भी गुफाएं, जिसमें वो लोग भी तपस्या कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। पांडवों का भी गायन है कि पांडव पहाड़ पर जाकर गल गए। हम सब कौन है, आप यहाँ क्यों आए हैं? गलने के लिए। गलकर क्या बन गए, बाबा की भाषा में कहे तो
गोल्ड
गल गए माना फरिश्ता बन गए, जो बिगर हड्डी मांस का शरीर उसे फरिश्ता कहते हैं, गल गए, हड्डियां गल गई। यहां भी रहने वाले अथक सेवाधारी बनकर इतनी सेवा करते, हड्डी हड्डी सेवा में देते, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी दी, ददीची ऋषि की भी बात है, तो ये सब यादगार है। तो ऐसे बेहद का पहाड़ों पर दुनिया से दूर, दुनिया से ऊंचा, आप सब भी सब कुछ छोड़कर आए हो, या सब लेकर आए हो जैसे सुनाया, अहमदाबाद को तो इधर साथ में नहीं ले आए हैं, अपने घर को तो नहीं ले आए हैं, ऑफिस को तो नहीं ले आए, दुकान कुछ भी लाना नहीं, सब वहां ही रहे। तन यहां है तो मन भी हमारा यहां ही रहेगा, तब बट्टी की कुछ अनुभूति कर सकेंगे, तभी हमारी एकाग्रता आएगी। तो ये स्थान है परमात्मा की अवतरण भूमि का। अनेक बार भगवान ने आकर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर, गुलजा दादी के तन में अवतरित होकर, अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे दिव्य महावाक्यों का उच्चारण किया। तो यहां ये सब वाइब्रेशन है, उच्चारण किया है। ये वरदान भूमि है, बाबा ने कईयों को वरदान दिए हैं, अनेक बार दिए हैं। जो पुराने होंगे वो बाबा से पर्सनल मुलाकात में वरदान लेते थे, बाबा देते थे। और वरदान भूमि इसीलिए है कि हम कम मेहनत में बहुत कुछ अच्छी स्थिति को पा सकते हैं, इसलिए वरदान भूमि भी है। तपस्या भूमि जो बताया कि ब्रह्मा सहित मम्मा सहित दादियों ने सबने बड़ी तपस्या की, ये चार्ज हुआ स्थान है। चार्ज करने का नहीं है, वातावरण बनाने का नहीं है, इन सभी ने इतनी तपस्या की है जो सब वातावरण फुल चार्ज है। और कर्म भूमि भी है, जो बाबा ने सिखाया वो सब कर्म ब्रह्मा ने करके दिखाया, ब्रह्मा द्वारा भी करके दिखाया, और अनेक आत्माएं तैयार हुई। तो ये हमारी पूर्वजों की भूमि है, ऐसे कहेंगे, पूर्वजों की भूमि के प्रति आकर्षण होता है। तो ये लाइट हाउस एंड माइट हाउस है, यहां से सारे विश्व तक लाइट एंड माइट बाबा पहुंचाते थे और हमें भी सिखाते हैं। और पहुंची हुई लाइट जहां पहुंची थी, जहां तक कोने कोने में, वहां से आत्माएं खींच करके वापस, जहां से लाइट निकली वहां वापस आई। आए इन कितने विदेशी भाई बहने निकले। तो एक पावरफुल मैग्नेटिक स्थान है, सबको आकर्षण है, मधुवन जाए मधुवन जाए, आप सब भी छोड़कर क्यों आए। शांतिवन में भट्टियां चल नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी ये विशेष भट्टी करने मधुवन में आए। भूमि का महत्व है, ये परिवर्तन भूमि इसलिए है कि ये शीष महल है। शीष महल में सब अपना चेहरा जहां देखो वहां दिखाई देता, हम क्या है कैसे है वहां नहीं पता पड़ता, यहां पता पड़ेगा। दूसरों को देखेंगे, जिसको भी, जो यहां मधुवन निवासी है, उनको देखकर हमें अपनी भूलों का, कमियों का रियलाइजेशन होगा। और जब रियलाइजेशन होगा तो परिवर्तन सहज हो सकता है। तो ये परिवर्तन भूमि है, कई नए नए भी आकर के इतने अच्छे अनुभव करते। अभी ज्ञान सरोवर में जो कल्चर विंग की कॉन्फ्रेंस चली, उसमें एक भाई आया था, उसने कहा मेरे पास 2 पैकेट सिगरेट के थे, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं सिगरेट पीऊं। ऐसे कमिश्नर थे, उसके पास वो शराब की बोतलें थी, नहीं मिलता इसलिए नहीं पिया नहीं, लेकिन था तो भी इच्छा नहीं होती थी, कारण वातावरण, वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली, पॉजिटिव, जो ऐसी सब बातों को सहज रीति वो सब छोड़ सकते थे। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, योगी हैं, पुरुषार्थ करना चाहते हैं तब तो भट्टी में आए हैं। तो इस भूमि पर जो संकल्प करेंगे, या अपने आप भी ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे कि मैं ये करूं वो करूं, और ये निश्चित करना कि इस वातावरण में जो भी संकल्प आए सकारात्मक जो भी संकल्प आए, शुभ संकल्प, वो करके ही रहना, उसमें ही हमारा कल्याण है ना। ये भी फाइनल करना, क्योंकि भट्टी करने आए हैं। भट्टी माना परिवर्तन, हमेशा कहते हैं रंग रूप गुण सब बदल जाता। कच्ची ईंटें भट्टी में पकाते हैं, पक्की हो जाती तो भवन के निर्माण में वही काम में आती है, बाकी साइड में ये कच्ची है छोड़ो। शायद बाबा ऐसा न कहे कि ये कच्ची आत्माएं, ये नई दुनिया के निर्माण में ये नहीं चलेगी, लेकिन हम ऐसे पक्के हो जाए। पक्के माना जैसे पक्की आम होती है तो मीठी भी लगती है, पक्की ईंटें होती है तो ये काम में लगती है, निर्माण के काम में। फिर पक्के होते हैं तो जरा भी हिलेंगे नहीं, कुछ भी होगा हलचल में नहीं आएंगे, मन इतना शक्तिशाली, स्थिति ऐसी अचल और अडोल। देखो सब यादगारें भी यहां बनी हुई है, ऐसा स्थान बाबा ने पसंद किया। तो जब भट्टी में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ हमें प्राप्ति करनी है, अनुभूति करनी है, तो सबसे पहले मुख का मौन, मन का मौन, तीसरा पता है मोबाइल का मौन। मोबाइल भी बंद रहे तो जब इतना समय निकाल करके, अपनी छुट्टियां लेकर के, सारा कारोबार छोड़ करके, खर्च करके, और यहाँ की भी इतनी सेवाएं हम सेवाधारियों की लेंगे, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने संकल्प में दृढ़ता को धारण करेंगे कि बाबा हमें इस भट्टी में कुछ अनुभूति जरूर करके ही जाना है। आज तक कई भट्टियां की है, की होगी ना इतने सालों में, लेकिन ये भट्टी ऐसी हो, अविस्मरणीय हो, कभी हम भूल नहीं सकते, ऐसी अनुभूति करके, ऐसे परिवर्तन करके जो आज तक नहीं बदल सके, ऐसे स्वभाव संस्कार जो भी बदलना है, जो दिल खाता है, जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना बाकी है, वो इस भट्टी में बदल करके दृढ़ता से धारण करके जाएंगे। तो जो भी क्लासेस चलेगी वो भी कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने लिए जरूरी लगे जरूर नोट करना, क्योंकि ज्ञान के खजाने, बहुत ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्माएं अनुभवी आपको क्लासेस कराएगी, तो उसमें से भी जरूर नोट करना। और जो मौन की बात सुनाई, वहां बहुत बातें हम करते हैं, आवाज में आते हैं, जब इतना छोड़ा है तो यहाँ आपस में भी बात न करें, अभी से ही अभी मौन शुरू करना अभी तक जो बातें की। और मोबाइल से भी अगर आपको घर में समाचार कुछ देना है कि वो चिंता न करे, बता दो कि हम 4-5 दिन हम फोन नहीं करेंगे, आप भी नहीं करना, हम तपस्या में हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल होगा, स्विच ऑफ करके रखेंगे, या कंट्रोल ना हो तो भानु बहन को दे देना आपका मोबाइल 4-5 दिन के लिए, जिस दिन जाना होगा आपको दे देंगे, ठीक है। आज बोलना है बोल दो, घर में सेट देना है तो दे दो, फिर निश्चिंत हो जाना। इसलिए ऐसी भट्टी करनी है, अपनी बुद्धि न चलाकर बाबा जैसे चलाए, यहां से जो डायरेक्शन मिले तो बाबा की बुद्धि से हम चले तो जरूर बाबा अनुभव कराएगा, क्योंकि उसे तो हमें संपन्न बनाना ही है, बाकी है हमारी बात। हमारी इतनी इच्छा तीव्र नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती, इसलिए हम नहीं बन पाते। तो बाबा की ओर से तो हरी झंडी है, अभी हमारी ओर से भी हरी झंडी लग जाए तो क्या होगा, स्पीड से चल पड़ेगी हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी। तो ऐसी भट्टी जरूर यादगार बना के हम जाए, ऐसा पक्का लक्ष्य रखना। और दिनचर्या जो यहाँ आपको बताई जाती है, हमेशा जैसा अमृत वेला 4 बजे योग होगा, यही 4 बजे योग होगा 4 से 5, और अमृत वेला जरूर करना। सुबह सुबह में हमारी ज्यादा से ज्यादा जो कहते हैं एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, बाबा से हम ज्यादा से ज्यादा अपने में भर सकते हैं, जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है वो पानी चूस लेता है फिर भरपूर हो जाता है फिर दूसरा नहीं चूसेगा, वैसे हम बाबा से भरपूर हो जाएंगे सुबह सुबह योग और ज्ञान से, फिर दिन भर में संगठन में कुछ कमी कमजोरियां दिखाई दे वो हमें वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, हाँ उसके लिए कोई संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए सुबह सुबह खुद को सैचुरेटेड कर देना, एकदम भरपूर संपन्न कर देना, तो अमृत वेला जरूर करना 4 से 5, यहाँ ही सबको समय पर पहुंचना है। फिर 6:30 से 7 मुरली क्लास से पहले योग होगा ओम शांति भवन में, और मुरली क्लास भी वहां ही सुनेंगे ओम शांति भवन में। 7 से 8 मुरली क्लास होगा। बहन जी बोलते हैं मुरली क्लास के बाद बाहर टोली मिलती है, तो वो ओम शांति भवन में ही टोली लेकर के जाना, इसलिए टोली जरूर वहां से लेकर उतरना। 8 से 9 नाश्ता, फिर दोपहर 1 से 2 भोजन। अभी बीच की दिनचर्या अपनी होगी, वो बाद में हर रोज सुनाई जाएगी। शाम को 4 से 4:30 चाय, और शाम को रात्रि को 7:30 से 8 भोजन। आज की दिनचर्या में अभी शशि बहन से हम बाबा की टोली लेंगे, दृष्टि लेंगे, फिर भोजन पर जाएंगे, और फिर शाम को 4 बजे 4:30 से 5 बाबा के कमरे में योग। अच्छा ऐसे ही करेंगे तो अच्छा, 5-5 मिनट बैठो, फिर चेंज करो, झोपड़ी में आ जाओ, झोपड़ी से हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, हिस्ट्री हॉल से शांति स्तंभ में चले जाओ। वहाँ ज्यादा बैठना हो तो बैठे, इस बाबा के कमरे में और झोपड़ी में ज्यादा नहीं बैठना, 5-5 मिनट बैठना, 5 मिनट पावरफुल दृष्टि लेकर के शक्ति भर के उठना, फिर 2 स्थान बड़े हैं वहाँ आप बैठ सकते हैं, हिस्ट्री हॉल में भी। तो 4:30 से 5 ऐसे योग चलेगा अपनी रीति से, लेकिन ऐसे नहीं ये तो भी अपनी रीति से करना है, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, लेकिन आगे सुना है दिनचर्या जो दी जाती उसमें हर एक अपने को चलाए। फिर 5:30 से 6:30 क्लास होगी शिलू बहन का, आज क्लास है यहाँ पर ही, क्लास सारी दिनचर्या हमारी फिर यहाँ ही चलेगी। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने की विधि हमारा पहला पाठ है, वो और पक्का करना है क्योंकि इतना किया नहीं, अनुभूति नहीं की है, तो शिलू बहन जी हमें वो विधि बताएगी, तो जरूर पहुंच जाना 5:30 से 6:30 से 7 शिलू बहन कॉमेंट्री से योग कराएगी, वो आत्माभिमानी स्थिति पर ही हम योग करेंगे। फिर 7 से 8 क्लास होगा रतन मोहिनी दादी जी, ऐसे दादी जी को अभी आना था, लेकिन दादी जी की दिनचर्या में जैसे शाम को ज्ञान सरोवर में भी है प्रोग्राम, तो थोड़ा सेटिंग किया।
दादी जी शाम को आएंगे, और आप सबके लिए मधुरवाणी ग्रुप ने एक बहुत सुंदर गीत बनाया है, वे शाम को ही सुनाएंगे, सुनाना तो अभी था, वो भी आपका स्वागत करेंगे, दादी जी मिलेंगे और बाबा के घर से याद सौगात भी देंगे और आप सबको टोली भी खिलाएंगे। दादी जी को कल सवेरे ज्ञान सरोवर में जाना है तो इसलिए रात को रखेंगे, कल आप सबसे मिलेंगे भी, आप फिर कल क्लास में भी मिलेंगे और उसके बाद ज्ञान सरोवर जाएंगे मीडिया प्रोग्राम के लिए,
इसलिए डबल टोली अभी शशि बहन से टोली मिलेगी, नहीं तो एक ही मिलती, डबल टोली मिलेगी सुबह 3 बार अधिकार है, एक्स्ट्रा 2 बार मिली, तो दादी जी टोली भी देगी, सौगात भी देगी, और फिर 9 बजे मोहन भाई का क्लास होगा ज्ञान सरोवर में, जो मोहन भाई है गुजरात के अहमदाबाद के ही, जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं उनकी क्लास है। तो इस प्रकार आज की दिनचर्या जो सुनाई वैसे स्वयं को, और यहाँ तो और कुछ काम है नहीं, तैयार भोजन मिलता है, इसलिए आप जरूर समय पर अपने क्लासेस और योग में पहुंचना। अभी बाबा की याद में टोली और दृष्टि लेकर के फिर भोजन पर सब जाएंगे।
ओम शांति। इन दीदियों ने अपने लिए बहुत सारी बातें आज से भरपूरता से भरपूर करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले कर्कट ध्वनि से, और मैं अनुरोध करती कि भट्टी के शुभारंभ में पावन घर मधुबन निमित्त बने हुए शशि दीदी और हमारे लिए समय निकाल करके तृप्ति दीदी आए हैं, तो उन दोनों का बैच और तिलक द्वारा भानु दीदी और गीता दीदी स्वागत करेंगे। वैसे तो परिचय शशि दीदी का बहुत ही सुना, तृप्ति दीदी जो 69 से ज्ञान में चले और बाबा को अपने बुद्धि से समझे और बाबा का साथ अपनाकर 71 में इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ भावनगर सबजोन के आप सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, कल्चर और आर्ट विंग के आप गुजरात कोऑर्डिनेटर भी हैं और कई अभियान और बहुत सुंदर शिविर आदि भी कराते रहते हैं, तो दीदी अपना कारोबार संभालते हुए भी इस भट्टी को मैनेज करने के लिए आए हैं, तो दोनों दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।